Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 18 and text number 10. Shri Bhagavan Uvacha. Satyam vayam bho vana gochara mruga. Yushmad vidhana mruga ye grama simman. Namrutyupashaye pratimuk tasya vira viktan namatva ghrnantya abhadra shri bhagavanu vacha Satyam vayam bho vana gochara mruga. Yushmat vidhana mruga ye grama simman. Namrutyupashaihi pratimuktasya vira. Viktan namatva grnantya bhadra. Shri Bhagavan uvacha. Satyam vayam bho vana gochara mruga. Yushmat vidhana mruga ye grama simha. Namrutyupashaye pratimuktasya vira. Viktan matva grnantya bhadra. Shri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of a Godhead said, Satyam, indeed, Vayam, we, Bho, O, Vanagocharaha, dwelling in the forest, Mrigaha, creatures, Yushmat Vidhana, like you, Mrigaye, I am searching to kill. Gramasimhan, dogs. No, not. Mrityupashehi, by the bonds of death. Pratimuktasya, of one who is bound. Virah, the heroes. Vikthanam, loose talk. Tava, your Ghrananti, take notice of Abhadra, O mischievous one. Translation and purport by His Loving Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. The Personality of a Godhead said, indeed, we are creatures of the jungle. And we are searching after hunting dogs like you. One who is freed from the entanglement of death has no fear from the loose talk in which you are indulging. For you are bound up by the laws of death. Purport. Demons and atheistic can go insulting the Supreme Personality of a Godhead. But they forget that they are subjected to the laws of birth and death. They think that simply by decrying the existence of the Supreme Lord or defying his stringent laws of nature, one can be freed from the clutches of birth and death. In Bhagavad Gita, it is said that simply by understanding the transcendental nature of God, one can go back home, back to Godhead. But demons and atheistic persons do not try to understand the nature of the Supreme Lord. Therefore, they remain in the entanglement of birth and death. Om Ajnanadimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guraha Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha. So in this verse, the personality of a Godhead is rebuking Hiranyaksha. And he is calling him as a hunting dog. Generally, wild animals, what do? They hunt for the hunting dogs. So Lord says, yeah, absolutely, what you said, that's true. We are like a wild animals, vanagocharaha. But you are like a wild dog which get hunted by such a wild animals. Because these demons and atheistic people, they are bound by the laws of karma and especially the laws of death. And the Supreme Personality of a Godhead, who is beyond the laws of this material nature, nothing makes any difference in his life, especially the material rules and regulations. Because the person who takes shelter of the Lord, who tries to know about the Lord, if he rises above the all modes of material nature, then how the Lord, who is a Trigunatita, who is beyond the modes of material nature, get affected by the laws of this material world? That thing has cleared by Prabhupada in this purport. And then the Lord says, Ete vayam nyasya rutar rasak kasam gata riyo gadaya davistaste tishamahe atapi kathachit ajav steyam kvayamo balinop padyavaram vairam. Certainly we have stolen the charge of the inhabitants of Rasatan and have lost all shame. Although bidden by your powerful Meg, I shall stay here in water for some time, because having created enmity with a powerful enemy, I know have no place to go. Purport. The demon should have known that God cannot be driven out of any place, for he is all-pervading. Demons think of their possession as their property, but actually everything belongs to the Supreme Personality of the Godhead, who can take anything at any time he likes. See, if at least this thing we understand, then that itself gives a solace to our heart to live peacefully in this material world. What do we really possess in this material world? Okay, list the name of objectives or things that you possess in this material world. They belong to you. Start. One. Yeah. That we really possess. What is that? Oh, Maharaj. ऐसी कौन सी चीजें है जो हमारी है इस दुनिया में? हाँ,
समय को क्या प्रोसेस, क्या जमा कर रहा है आत्मवन
किया? अच्छा, मायापुर का घर,
मायापुर प्रोजेक्ट का घर,
प्रोजेक्ट नहीं घर, रूम, क्या बोलते
हैं जहाँ आत्मवन का किस
कुछ भी नहीं है
संसार,
कुछ भी नहीं है,
सब क्या है?
नहीं, ये हम ऐसे ही बोल देते हैं, बोलने के लिए हमारे बाप का कुछ नहीं जाता।
नहीं, क्या है तो सब तो छाट ही जाना पड़ता है ना।
लेकिन
ये शरीर है।
क्या उस कथन का हमें साक्षात्कार है कि पूरा विश्वास है कि हमारा नहीं है?
भगवान के ऊपर विश्वास है।
सोचते हैं हम ऐसा?
हाँ, मैं
तो, सही में
मैं तो सोचती हूँ
नहीं नहीं कि मेरा कुछ नहीं है, सारा भगवान का है, ऐसा हम सोचते हैं?
हाँ, सोचते हैं।
जय हो, दो साधुओं के आज सुबह सुबह दर्शन हो गया। ये बहुत कठिन है मालूम है, ऐसी भावना को प्राप्त होना बहुत दुष्प्राय है इस भौतिक जगत में। टू कल्टिवेट सच अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू थिंक दैट नथिंग बिलोंग्स टू मी is the highest stage in this material world. ये उन लोगों की स्थिति है जो परमहंस स्थिति पे है, जो परमहंस स्थिति पे रहते हैं। ना तो उनको कभी किसी के प्रति क्रोध आता है, ना किसी के प्रति आसक्ति आती है, क्योंकि वे जानते हैं ये सारा भगवान का ही है, हम वे स्थिति में नहीं है।
अगर
मैंने पूछा क्या उस चीज का हमें साक्षात्कार है? साक्षात्कार जानते हैं ना,
साक्षात्कार
मन में है, ऐसे लग रहा है, मन में कोई अनुभव हो रहा है कि नहीं?
अनुभव है,
कहने के लिए बहुत आसान है, कई बार हम अपने आप से ही झूठ बोल देते हैं। जिस दिन वो स्थिति आ जाएगी आप इस दुनिया के नहीं रहोगे। व्हेनेवर यू अटेंड दैट स्टेज यू विल नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, बिकॉज हुएर देयर हुएर स्टेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो भी इस भौतिक जगत में रहता है उसकी भावना यही रहती है कि ये मैं हूं और ये मेरा है, अहम ममेति, मैं और मेरा। और प्रभुपाद यहां तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के भक्त जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है। सर्वत्र वसति इति वासुदेवः, भगवान सर्वत्र वास करते हैं, तो ना तो हम उनको कहीं वहां से निकाल सकते हैं, ना कहीं से उनको डाल सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे है ही है। लेकिन जो नास्तिक लोग है या जो राक्षस लोग है उनको उसके प्रति विश्वास ही नहीं रहता। और वही एक बात है जो हमें इस भौतिक जगत में बांध के रख देती। जिस दिन हमें यह साक्षात्कार हो जाएगा कि यह सब भगवान का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, वैसे अगर सर्वसाधारण रूप से भी विचार करते हैं तो ये शरीर जिसको हम मेरा कहते हैं, अरे भाई मेरा हाथ है, मेरा पैर है, लेकिन जब वो दर्द करने लगता है तो मैं मेरे पैर और हाथ को दर्द करने से रोक सकता हूं? ही रोक सकता। भूख लगती है, मेरा पेट है, मैं चाहूं मुझे नहीं खाना है, हो सकता है वैसे एक दिन दो दिन चार दिन 20 दिन 21 दिन उसके बाद शरीर बोलता है फिर अलविदा, तुझे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। शरीर हमें छोड़ देता है, हम शरीर को नहीं छोड़ते, फिर भी हम शरीर को पकड़ के रखना चाहते। ये भूत योनि पिशाच योनि क्या है जो शरीर के प्रति इतनी आसक्ति रहती है कि अपना शरीर नष्ट होने के पश्चात भी अन्य शरीरों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और यही एक भावना है मैं और मेरे की, ममेति की, जो हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखते। और भगवान स्वयं ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस भावना से हमें मुक्त कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भक्त इतने शांत कैसे रहते हैं, उनके मन में उथल पुथल क्यों नहीं होती, क्योंकि वो इस शरीर के स्थिति पे या देहात्म बुद्धि के स्तर पे होते ही नहीं है। यह फर्क है साधक और भक्त में। हम तो बड़ी शान से कह देते कि भी हम कृष्ण भक्त है, हम भक्त है, इनके भक्त है, उनके भक्त है। भक्त केवल भगवान के होते हैं, बाकी के लोग उपासक होते हैं, उपासना करने वाले। उपासना और भक्ति में बहुत अंतर है। भक्ति वो है जिसमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रहती है, और उपासना वो है कि जिसके पीछे उपास्य को प्रसन्न करके उससे कुछ हमें चाहिए, ये भाव रहता है। एक में सब कुछ अर्पण करने का, समर्पण का भाव रहता है, और दूसरे में अर्जन का, प्राप्त करने का भाव रहता है। तो यही साधक और भक्त में फर्क है। तो हमें प्रयास करना चाहिए भक्त बनने का, क्योंकि भक्त ही है जिसे भगवान चाहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कौन मुझे जान सकता है, मेरा भक्त और कोई नहीं। कोई माई का लाल आके बोल देता है कि भाई ओ आपका भगवान है तो दिखाओ मुझे, तो भगवान कोई टॉम डिक हैरी थोड़ी है, कोई लल्लू पंजू थोड़ी है कि भाई लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, लो ये है करके। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को हम अपने आंखों से देखना चाहते, वो भी संभव है। इन्हीं भौतिक आंखों से भी हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक पद्धति है, और वो क्या है, आपको सुनाई दे रहा है
दिल से
कैसे देखेंगे, अगर इन्हीं आंखों में भगवान के प्रति हम प्रेम उत्पन्न न करें तो वो साक्षात भगवान जो पार्थ के साथी है उनको हम देख सकते हैं। जैसे वर्णन किया जाता है, तथैव चान्ये नरलोक वीरः, कि उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कई सारे बड़े बड़े योद्धाएं थे। यह आह वे कृष्ण मुखारविंदम, बट वे क्या देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का कमल के सदृश सुंदर सा मुख देख रहे थे। नयनाभिपिबंदो नयनाभिरामम, और आंखों के द्वारा भगवान के उस अनंत सौंदर्य का रसपान कर रहे थे। जब आंखों में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेम अंजन छुरित, छुरित याने आंखों में अगर प्रेम का अंजन डाला जाए, ऐसा नहीं कि वो बाजार में मिलता है एक दो बूंद लेके और आंख में डाल दो, वैसे नहीं वो आएगा। कैसे आएगा फिर? सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो, भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण जब करेंगे तब जाके क्या होगा, आंखों में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और उन प्रेमपूर्ण नयनों से जब भगवान को हम देखेंगे तो वही साक्षात व्रजेंद्र नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर वे आपके सामने प्रकट हो। अन्यथा भी हिरण्याक्ष के सामने भी तो भगवान खड़े ही है ना, लेकिन भगवान की भगवत्ता जान रहा है क्या वो? नहीं, क्योंकि आंखों में प्रेम नहीं बल्कि भगवान के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है। और जब ये द्वेष, ईर्ष्या, असूया ये चीजें है तो भगवान साक्षात सामने खड़े रहने के पश्चात भी हम उनको नहीं देख पाएंगे। जैसे मीरा के पति एक बार मीरा देवी को बोलते हैं कि क्या आप मुझे वे साक्षात कृष्ण के दर्शन करवाएंगे, तो मीरा जी तुरंत दिखाते, ये देखो ये है गिरिधर नाग। तो बोले ये नहीं, वे जो त्रेता युग में साक्षात खड़े थे सबके सामने। तो मीरा बोली, राणा जी भगवान साक्षात दुर्योधन के सामने खड़े थे लेकिन दुर्योधन कभी उनको समझ नहीं पाया, क्योंकि उनको देखने के लिए और समझने के लिए प्रेम चाहिए उनके प्रति, उनके प्रति प्रेम हो, उनके प्रति भाव हो, तो उस भाव के अनुसार आदान प्रदान करते मेरे भगवान। तो भगवान को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पद्धति है, विधि है, साधना है, तो वो है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। अन्यथा फिर हिरण्याक्ष जैसे जो कटु वचन है वे भी हमारे मन में, हृदय में आ सकते। फिर आगे भगवान उसको कहते हैं, त्वं पदरथान खिल युथपाधिपो घतस्वहानो अश्वस्त्यह अश्व अनुहा। यू आर सपोज टू बी कमांडर ऑफ मेनी फुट सोल्जर्स एंड नाउ यू मे टेक प्रॉम्प्ट स्टेप टू ओवरथ्रो अस, गिव अप ऑल योर फुलिश टॉक एंड वाइप आउट द केयर ऑफ योर किथ एंड किन बाय स्लेइंग अस। वन मे बी प्राउड येट ही डज नॉट डिजर्व अ सीट इन एन असेंबली if he fails to fulfill his promised word. See now, the big teachings of morality has explained here. A person is not able to follow his own promise, he's not able to keep his own words, then he never deserves a seat in the assembly of the people. That means that person is not presentable in the society. He should be abandoned by the society if he is not able to keep his own words. And Prabhupada in purport he says, a demon may be a great soldier and commander of a large number of infantry, but in the presence of the Supreme Personality of a Godhead, he is a powerless and is destined to die. The Lord therefore challenged the demon not to go away, but to fulfill his promised word to kill him. As in the previous verses, Lord Varaha was insulted by Hiranyaksha, and he boasted that he is going to kill their lordship. He will smash the skull of their lordship by his powerful make. So now, Lord, he says, "Bahut bol liya abhi. Ab thoda kuch karke dikhao." क्योंकि वो जैसे हिंदी में कहावत है कि जो बादल गरजते वो बरसते नहीं और जो बरसते वो गरजते नहीं. तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे हिरण्याक्ष को, अगर अपने आप को अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हो तो अपने आप को हमारे सामने रखो, दबा भाग जाओ यहां से, चाहे तुम कितने बड़े योद्धा क्यों ना हो, बड़े बड़े दलपति स्थलपति अश्वपति गजपति क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने प्रतिज्ञाओं को नहीं पालन कर सकते, उनका रख नहीं सकते, तो निकल पड़ो यहां से. और ये समझना बहुत आवश्यक है, और ये अगर हम नहीं समझते तो हमें समझाने के लिए भगवान ये अलग अलग लीलाएं करते हैं. Then further, Lord says, Maitreya Rishi, he says, the demon being thus challenged by the personality of a Godhead became angry and agitated, and he trembled in anger like a challenged cobra. A cobra is very fierce before ordinary person, but before an enchanter who can play with him, he is a plaything. Similarly, demon may be very powerful in his own domain, but before the Lord, he is insignificant. The demon Ravana was a fierce figure before the demigods, but when he was before Lord Ramachandra, he trembled and prayed to his deity, Lord Shiva, but to no avail. So this is what happens. You may be a very powerful person in the world, but in front of the Lord, you are just like a puppet who dance as per the wish and will of material nature. So here, Maitreya Rishi said, this Hiranyaksha was challenged by the Lord, and he was reacting like a fierce cobra. But in the purport, Prabhupada says, cobra may be very fearsome for whom? For ordinary people. But the person who enchant that cobra, for him he is like a plaything. So for the Lord, this powerful demon Hiranyaksha is nothing but a plaything. In that regard, all the people in this world, they are like a plaything in the Lord. And then this Hiranyaksha, hissing indignantly, all his senses shaken by the wrath, the demon quickly sprang upon the Lord and dealt him a blow with his powerful make. And the further thing we will discuss tomorrow. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Granthara Srimad Bhagavatam ki, Samaved Bhaktavinda ki. Nitai Gaura Premanande.